તારીખ 21/9/1997 શ્રી સમયસાર ગાથા 186 તથા સમયસાર કળશ શ્લોક નંબર 126 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 35.
શુદ્ધાત્મા કો જાનતા હુઆ અનુભવ કરતા હુઆ જીવ શુદ્ધાત્મા કો ભી પ્રાપ્ત કરતા હૈ और अशुद्धात्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को भी प्राप्त करता है। क्या कहना चाहते हैं कि जो अपने शुद्धात्म स्वरूप को अनुभव करता है उसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति मिली जाती है, और जो अशुद्ध आत्मा को मैंने विकल्प को अनुभव करता है, जो आत्मा विकल्प का अनुभव करता है, राग का अनुभव करता है, अशुद्धि का अनुभव करता है, चाहे वो विकल्प भले ही शुद्धात्मा का हो, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा विकल्प वो भी अशुद्धात्मा है, वो भी शुद्धात्मा नहीं है। उसका जो अनुभव करता है कि मैं ऐसा, तो अशुद्धात्मा को प्राप्त करता है, उसको अशुद्धता का अनुभव होता है। अशुद्धात्मा को प्राप्त करता है मैंने, उसको अशुद्धता का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव प्रधान ये गाथा है, विचार प्रधान विकल्प प्रधान गाथा है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो सदा जी अच्छिन्न धारा वाले ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह नानवे भाव में से नानवे भाव में होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रमण का निमित्त जो राजवेश की संकति परंपरा, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा को भी प्राप्त करता है। क्या कहा, जो सदा ही अछिन्न धारावाही ज्ञान है, ये शुद्धोपयोग की बात नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग धारावाही रहे मुनिराज को तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाता है, वो साधक नहीं रहता, वो परमात्मा बन जाता है। साधक अवस्था में शुद्धोपयोग है वो मुनिराज को क्षण क्षण में आता है, और नीचे के गुरु स्थान में कभी कभी आता है, जिसका कोई समय का नियम नहीं देखा जाता कितने समय में वो आता है। लेकिन परिणति, ज्ञानमय परिणति धारावाही चतुर्थ गुण स्थान से चलती है, उसको यहाँ कहते हैं कि अछिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है। ये परिणति की बात लिया है, उपयोग की बात नहीं लिया, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में उपयोग बहुत अल्प है, पंचम में थोड़ा ज्यादा है, छठे गुण स्थान में ठीक ठीक है, फिर भी उसमें भी छिन्नता मैंने त्रुटक त्रुटक भेद हो जाता है। छठे गुण स्थान में विकल्प में निराज आते हैं, उसको शुद्धोपयोग नहीं रहता। जब शुद्धोपयोग आता है सप्तम गुण स्थान में आ जाते हैं, तो यहाँ तो समूर अधिकार है। वेद ज्ञान पूर्वक जिस ज्ञानी को समूर हुआ उसकी चर्चा चल रही है, इधर कोई मुनिराज की भी चर्चा नहीं, तो केवल ज्ञानी की तो बात ही नहीं है। क्योंकि समर केवल ज्ञानी को नहीं बोला जाता, वो तो मोक्ष तत्व में आ गए। जो सदा ही अछिन्न धारा ही नाम से मैंने शुद्धात्म परिणति के कारण से, ये शुद्धात्म परिणति बोली जाती है, उसको ज्ञान धारा भी बोलते हैं, उसको चैतन्य धारा भी बोलते हैं, आत्मधारा भी कहते हैं और अमृत धारा भी कहते हैं। ऐसे ज्ञान से, ऐसे परिणमन से शुद्धात्मा का अनुभव किया करता रहता है। शुद्धात्मा का अनुभव निरंतर वर्तता है, वह ज्ञानमय भावों में से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार मैंने अपना स्वरूप ज्ञानमय है, और जब मेरा स्वरूप ज्ञानमय है तो मेरे स्वरूप में से जो भाव उठेंगे वो तो ज्ञानमय ही होंगे। ठीक है, मेरा स्वरूप ज्ञानमय है तो मेरे स्वरूप में से जो भाव उठेंगे वो ज्ञान नहीं बनेंगे। ऐसे सोना है, किसी भी प्रकार के उसमें गहना बनाए सब सोना ही सोना रहेगा। चाहे गले का हार बनाओ, चाहे हाथ में पहनने का बनाओ, चाहे माथे का मुकुट बनाओ, चाहे कान का सुंदर बनाओ, सब सोना ही सोना है। जैसे आत्मा ज्ञान में है तो उसमें से सब परिणाम ज्ञान में हो गया। किसको? जिसको ऐसा अभेद अनुभव हुआ उसको। ऐसे जीव को आगामी कर्मों के आक्रमण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति उसका निरोध होने से वो शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। उसको क्या होगा कि नए कर्म आने का जो निमित्त कारण राग द्वेष है वो मिट जाएगा, उसका संवर हो जाएगा, आने का बंद हो जाएगा और उसका शुद्धात्मा का उसको अनुभव उपयोग से होता रहेगा। परिणति से उपयोग और उपयोग से परिणति, ऐसा दोनों में पूरक भाव है। ध्यान दशा में, साधन दशा में बार बार शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध ज्ञान की परिणति, शुद्धात्मा की परिणति बलवान होती जाती है। जैसे जैसे शुद्धात्मा की परिणति बलवान होती जाती है वैसे वैसे बार बार शुद्ध उपयोग आता रहता है, और वो शुद्ध उपयोग में तात्पर्यता बढ़ती है इसके संवेदन की, उसमें स्थिर होने का समय भी बढ़ता है और पुरुषार्थ ताकत भी बढ़ता है, और सभी गुण आत्मा के दूसरे गुण भी शुद्ध होने लगते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार होते हुए ज्ञान दशा की परिस्थिति। अब अज्ञान दशा की बात करते हैं कि और जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, क्या है? जिसको शुद्धात्म स्वभाव की पहचान नहीं, अनुभव नहीं, दोनों में से कुछ नहीं, वो तो क्या करेगा? कुछ न कुछ विकल्प करता रहेगा और वो विकल्प को ही आत्मा मानेगा, आत्मा जानेगा, क्योंकि तो उसके साथ उत्तम नहीं रहेगा। तो अज्ञान से ऐसा होता है, अशुद्ध परिणाम को भी अपने रूप अनुभव करना ये एक अध्यास है और उसी को यहाँ आत्मा रूप अनुभव होता है। तो अज्ञान से होता है, अज्ञान से मैंने शुद्धात्मा का, शुद्ध स्वरूप का अनुभव और पहचान नहीं है, इसलिए सदा ही अज्ञान से अशुद्धात्मा का अनुभव किया करता है। वह अज्ञानमय भावों में से अज्ञानमय भाव ही होता है, वो खुद को राग रूप मानता है, विकल्प वाला मानता है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा अनुभव करता है, तो उसमें से ऐसे ही भाव निकलेंगे। उसमें से दूसरी जाति का भाव, ज्ञान जाति का भाव निकलने वाले नहीं है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रय का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति, उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। तो उस तरह जो अज्ञान से रागादि को, विकल्प को अपने रूप अनुभव करता है, उसको कभी आश्रय का निरोध होता नहीं है, उसको कभी राग द्वेष मिटता नहीं, और वो हमेशा अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है, यानी अशुद्ध भावना का ही अनुभव करता रहेगा, उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव कभी भी होगा नहीं। अतः शुद्धात्मा की उपलब्धि से, अनुभव से ही संवर्ध होता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जिसको अपना शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव होता है, उसको नया कर्म आने का बंद हो जाता है, उसको ही संवर्ध होता है, उसको ही राग द्वेष का अभाव होता है, दूसरे को होता नहीं है। तात्पर्य वो निकलता है गाथा का, ये गाथा अनुभव प्रधान है। आप किसका अनुभव करते हो और देखो, जो जो विकल्प जिस काल में जो जो विकल्प होता है, उसका अपने रूप अनुभव करते हो, तो कभी संवर्ध होने वाला नहीं है। अगर आप शुद्धात्मा की पहचान करके शुद्धात्मा का अनुभव करते हो, संवर हो करके आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा और आपकी आत्मा हमेश के लिए शुद्ध हो जाएगी। ये
तात्पर्य पंडित जी पूर्णी साहब ने फरमाया है कि जब शुद्धात्मा का ये विचार करता है, तो विचार करते करते अंदर में जाकर विचार घृढ़ हो जाते हैं, विचार विचार हो जाते हैं,
ठीक है,
जैसे मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा विचार करते करते वो अंदर में पहुँचता है, तो विचार घृढ़ होकर के वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वैष्णव जी ने दोनों जन फरमाया है।
अच्छा,
तो अब आप इसको ऐसा कह रहे हैं कि जो अशुद्धात्मा जो मैं परमात्मा हूँ, ये भी विकल्प है, और विकल्प जो है ये जो है अशुद्धात्मा को लेने वाला है, ये बात हमें समझ में नहीं आई।
अच्छा, वैसे पर चिट्ठी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वो बात लिया है ज्ञानी की,
किसके बनने के लिए?
नहीं 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 नहीं, निकालो चिट्ठी,
उसमें ऐसा लिखा है,
निकालो,
उसमें ऐसा लिखा है सर, जिसको स्वानुभूति हो चुकी है उसको दोबारा स्वानुभूति कैसे उत्पन्न हो, यहाँ से उसका
पढ़ने में जो भूल कमी हुई, ऐसा पढ़ने में अपनी भूल कमी हुई आपके, ये ज्ञान की बात लिखा है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। आप क्या करते हैं, अपने अभिप्राय के अनुकूल सब बात को घटा लेते हैं, निकालो आपके यहाँ, बहुत ध्यान से पढ़ना शास्त्र को, शास्त्र पढ़ करके अपना अभिप्राय को दृढ़ नहीं करना, शास्त्रकर्ता का अभिप्राय के साथ अपने को चलना है, अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र को नहीं मानना है। अच्छा है, हमारा भी थोड़ा अध्ययन है, मतलब निर्भर करा देते। अच्छे अच्छे विद्वान लोग ये भूल करते हैं,
हाँ है, लेकिन ये जो है ना अध्यात्म संदेश में दिया है ना, इसकी भूमिका शुरू में जो छह सात लाइनें हैं उसमें ये लिखा है कि जिसको अनुभूति हो चुकी है,
342 पद का पेज, पेज नंबर 342, अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, है निकला
सर्वभाग,
वही सम्यक्त्वी, कौन इसकी बात करी है, सम्यक्त्वी, आपने वो बात करी नहीं, तभी तो आपके आपने ध्यान में लिया नहीं, प्रश्न में आई हुई वो बात, अपना जो प्रश्न ले लिया अपनी बात, वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है, क्या करता है, सम्यक दृष्टि भी जब जब उनको निवृत्ति बाह्य कार्यों से मिलती है, वो एकांत में बैठ करके अपना स्वरूप ध्यान लगाने का प्रयास करता है, किसकी बात चली है, अपने रहता हूँ अपने तक साक्षात मंत्र है उसमें, उसको तो भेद ज्ञान है, तो उसको जो विकल्प चलेगा उसका भेद ज्ञान चालू रहेगा, इसलिए वो निरंतर ध्यान में आएगा। और जिसको भेद ज्ञान नहीं चलता है तो विकल्प के साथ एकत्व साधता है, उसको निर्विकल्प दशा कहां से आने वाली है विकल्प करते करते। गुरुदेव बहुत कड़ा निषेध करते थे इस बात का कि राग करते करते वितराग हो जाएगा, विकल्प करते करते निर्विकल्प हो जाएगा, ऐसी भूल कभी करनी नहीं है, होने वाला नहीं है, कि कारण कार्य विपरीतता है, बहुत बड़ा विपर्यास है। तो आपने जहां जहां दो दो बात पढ़ी है खोद खोद के निकालो तो कहां कहां कौन से अभिप्राय में गड़बड़ किया है, कैसे कैसे गड़बड़ हो गया है, देख लेना। उल्टी छुट्टी हो जाती है, बातें सारी उल्टी छुट्टी हो जाती है। और ये अच्छे अच्छे विद्वान हमारे गुरुदेव को सुनने वाले अच्छे अच्छे विद्वान ये गलती करते हैं। तो बात वहां तक चली थी कि उसमें जब वो विचार होता है आत्मा का ज्ञानी को, तो उनको बहुत उल्लासित परिणाम हो जाते हैं। तो किसी विद्वान ने ले लिया कि देखो उस उधर आत्मा का आनंद आ गया, वो बात भी नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं है, वो मानसिक आनंद है। स्मरण ने ऐसा किया है, ज्ञान की बात की है, तो ज्ञानी को वो आत्मानंद नहीं है, उसको भी आत्मा का विकल्प करते हैं, लेकिन इसको ज्ञान में शुद्धात्मा है, श्रद्धा में शुद्धात्मा है, डायरेक्ट विकल्प के आग बिना सीधा है। लक्ष्य में शुद्धात्मा होते हुए भी जब तक विकल्प चलता है तब तक निर्विकल्प दशा नहीं रहती, नहीं आती। ज्ञानी को भी ध्यान करते हुए ध्यान का प्रसंग लिया है, ज्ञानी को भी ध्यान करते हुए ये विकल्प मंद होते जाते हैं। विकल्प मंद हो जाता हो जाता है तो उनको भी मानसिक शांति का अनुभव होता है, रोमांच उल्लसित होते हैं, वहां तक लिखा है। हमारे तो इस विषय पर बहुत चर्चाएं चली है, इसलिए नींद में जो पूछे तो भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सी चर्चा चल रही है ऐसे विषयों पर विद्वानों विद्वानों के लिए। तो इतनी छंद हुई है, एक एक शब्द का ख्याल है, तो रोमांच उल्लसित होता है तो कोई लक्ष्य देखो आत्मा का आनंद आ गया, नहीं वो आत्मा का आनंद नहीं है, वो मानसिक आनंद है। ज्ञानी को जाति की पहचान है, अवलोकन पद्धति में जब वो मुमुक्ष भूमिका में आया था तब से उनको पहचान होने का प्रैक्टिस चला था, इसलिए कोई भी भेष धारण करके कोई भी विभाव आता है उनको वो पहचान लेता है कि ये विभाव। तो मानसिक शांति को भी वो विभाव समझता है, प्रभाव रुकता नहीं है। जिसको पहचान नहीं है स्वभाव विभाव के, उनको मानसिक शांति में आत्मा की शांति का अनुभव लगता है और वहां वो रुक जाता है, उसकी भूलवा होती है। तो जिसका भेद ज्ञान से निषेध होना चाहिए उसका आदर हो गया, जिस विभाव का निषेध करके अभाव करना है उसका आराधन करने लगेगा, इसकी साधना किसकी होगी, विभाव की साधना हो जाएगी। अन्य मत भी ध्यान करते हैं, जैसे जैनियों में ध्यान है वैसे वेदांत में तो बहुत चला है, और अब तो वेदांतियों के ध्यान केंद्र जगह जगह है सारे विश्व में, यूरोप अमेरिका में सब जगह है। और उसमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ है पातंजल योग दर्शन करके, हमारे यहाँ भगवान शिवचंद्राचार्य का ज्ञानारण्य ग्रंथ है, वो तो ध्यान का ग्रंथ है। पर ऐसा ही ग्रंथ उन लोगों ने, एक पातंजलि मुनि हो गया, उन्होंने पातंजल योग दर्शन करके इस ग्रंथ को लिखा है। पर वो लोग भी ध्यान बहुत करते हैं, पर वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि वचन से कहीं नहीं जाए ऐसी अनिर्वचनीय आत्म शांति हमको अनुभव में आती है। क्या बोलते हैं तो उसके वेदांत का खास शब्द है, अमीर वचन या आत्म शांति का अनुभव क्या होता है, हम आपको बता नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे, कह नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव हमारा है। उतनी पकड़ रहती है तो वो उसको आत्मा का अनुभव नहीं है, वो बात मानने को तैयार नहीं होते।
मन की शांति कहने
में, मन की शांति प्रमाण गलती क्या हुआ है, हमारे सामने कई लोग आते हैं, ऐसे वेदांत के भी आते हैं कई लोग, हम उनको पूछते हैं आपको ये शांति का अनुभव कहाँ होता है, तुम्हारा ये जो आत्मा है शरीर प्रमाण, वो लोग तो शरीर प्रमाण मानते नहीं, वो लोग तो लोकालोक प्रमाण, लोक प्रमाण
ब्रह्मांड
प्रमाण, फिर भी हम उसको पूछते हैं कि आपको अनुभव कहाँ होता है, तो परमात्मा की मूर्ति में होता है या अपने आप में होता है, पता नहीं होता है अपने आप में, तो दूसरे में नहीं होता है, होता है तो हमारे में होता है, फिर कहाँ होता है बोलिए, तो बोलते इधर होता है, क्या बताते हैं उसके अंदर के पार्ट को लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म का अनुभव ब्रह्मरंध्र में होता है, जबकि आत्मा एक अखंड प्रदेशी होने से स्वानुभव पूरे क्षेत्र में होता है, प्रदेश प्रदेश में होता है, कभी एक पार्ट में नहीं होता है, एक पार्ट में होता है वो इंद्रिय ज्ञान है, जैसे चक्षु नाक कान जी इंद्रिय ज्ञान है, वो लोग को वो मालूम नहीं, क्यों कि वहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पदार्थ के वस्तु स्थिति का कोई विज्ञान नहीं, तो साइंस नहीं है वहां, तो एक ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है ऐसा मानते हैं, तो पदार्थ विज्ञान ना है जड़ चेतन का, जब जड़ चेतन का पदार्थ विज्ञान नहीं है तो जड़ चेतन की भिन्नता का भी पदार्थ विज्ञान वहां नहीं है, तो राजा जी से भेद विज्ञान का तो अवसर ही नहीं रहा, तो सारा भेद विज्ञान का चैप्टर जो अध्यात्म के प्रकरण की जड़ है कोई वहां नहीं है, बाकी अध्यात्म की बहुत बातें हैं, अध्यात्म की इतनी बातें हैं कि आपको ताज्जुब हो जाओ, वितराग शब्द का प्रयोग किया है भगवद गीता में, वितराग भय क्रोध चित मुनि उच्यते, जो मुनि वितराग है भय से रहित है, वितराग भय क्रोध राग से भय से क्रोध जिसका बीत गया, ऐसा जो स्थिर ज्ञान वाला मुनि उसको हम स्थित धीरे मुनि उच्यते, जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हुई ऐसा मुनि कहते हैं, और जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है आत्मन्येवात्मना तुष्टाः चित्तप्रज्ञस्तदोच्यते, आत्मा से आत्मा में जो स्थित हुए हैं उसमें आत्मा स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, हम तो बचपन में ये सब कंठस्थ कर लिए थे भगवद गीता के श्लोक को, अधिकार के अधिकार पूरे पूरे स्कूल की तेज थी, स्कूल टाइम में तो याददाश्त ज़्यादा होती है, तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते सब ये कंठस्थ कर लिए थे, बातें हैं बहुत सी बातें हैं, हमको तो उस वक्त भी पढ़ते ही झंझनाते होते थे, ये क्या बात होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निजी के विषय में भूलते हैं, शुद्धात्मा के विषय में वो नहीं भूले हैं, जैसा सम्यक दर्शन का विषय है वैसा ही उन लोगों का आत्मा का विषय है, हमारे जैन दर्शन का सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा और सांख्य का आत्मा में फर्क नहीं, फिर फर्क कहाँ पड़ा, विधि में फर्क पड़ा, विधि में भूल हो गई, अन्य मत में जैन में और जैनेतर में अन्य मत होने का एक ही कारण है विधि की भूल का, शुद्धात्मा की बात समझनी बहुत आसान है, आत्मा एक है शुद्ध है परिपूर्ण है ध्रुव है कुटस्थ है परिणामी है ज्ञायक तत्व है परम पारिणामिक भाव है, लेकिन उसकी प्राप्ति की विधि बहुत सूक्ष्म है, 12 अंक का रहस्य वहां पर है, कैसे अंतर्मुख हुआ जा रहा है, वो विधि का पता जिसको चला उसका निवेदन हो गया। ज्ञान व्याख्या में बात कहा कि अब व्यवहारो अभ्यथो व्यर्थो देशो सुधनयो, सुधनय का विषयभूत आत्मा है, वही सत्यार्थ आत्मा है, वही भूतार्थ आत्मा है, वही सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा है। तो दूसरे पंक्ति में क्या गया, व्यर्थम मसीदो ये बात कर लिया कि सम्यक समाधि हवरी जीवो, समाधि को किसकी बात हुई चतुर्थ स्थान वालों को। तो आचार्य श्री शुद्धात्मा को स्थापित करते हुए उसके अंतर्मुखता को आश्रय को साथ साथ स्थापित क्यों कर देते हैं, क्योंकि दो बात अलग रखने से हमको बात अधूरी समझ में आएगी, दो बात का टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए संसार की पद्धति को उतनी विचक्षणता से आई है। भारत आचार्य श्री तो बहुत बड़े महान आचार्य थे, तुमको माता कोई कहा कुछ कह नहीं सकते इसके विषय में, ये असाधारण क्या बोला जाए इसके लिए, पद्धति के लिए ऐसी पद्धति आई कि शुद्धात्मा को स्थापित करते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा है। किसने जाना, आप कहते हैं कि आत्मा त्रिकाल एक रूप शुद्ध परिपूर्ण ज्ञानानंद आदि अनंत गुणों का धाम निधान हमारा स्वरूप है, किसने जाना, ऐसा किसने जाना कि त्रिकाली ने त्रिकाली को जाना या किसी और ने जाना। हाँ, कि जो ज्ञान इसके सम्मुख हुआ, जो ज्ञान वो अंतर तत्व के सम्मुख होकर के अंतर्मुख हुआ, उसने जाना से आत्मा एसेंस है, मेरा स्वरूप ऐसा है। हाँ, वो बात जरूर है कि जानने वाला जिसको जानने वाला उपयोग जिसको जानता है वो पदार्थ इतना महिमावंत है कि जानने वाला अपने आप को भूल जाता है। जिसके प्रति अनहद प्रेम होता है वो अपने को भूलता है, पता है द्रव्य दृष्टि प्रकाश भगवानी जी क्या लिखते हैं कि जिसके प्रति अनहद बेहद प्रेम होता है वो अपनी जात को भूल जाता है। दृष्टि की पर्याय ज्ञान की पर्याय जिसने भी अपने स्वरूप को प्रेम से देखा, अनहद प्रेम से देखा, तो पर्याय खुद अपने आप को भूल जाती है, मेरा कोई भिन्न अस्तित्व है वो बात उनको अनुभव में नहीं रहती। अब तक उसका जो अनुभव था पर्याय में अहम बना था वो छूट जाता है, और वो पर्याय द्रव्य में अहम तना अभेद भाव से करने लगती है। हमारी एक मुमुक्ष ने प्रश्न उठाया कि ये बात कहां से सही है, ये तो बात गलत हो गई, पर्याय का अस्तित्व पर्याय में है, द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में है, द्रव्य पर्याय रूप नहीं है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं है। अब पर्याय को पर्याय ऐसे बोलती है, ऐसा भाव करती है कि मैं तो द्रव्य रूप हूं, तो पर्याय ने गलती किया क्या नहीं किया, तर्क उठाने वाले तो कहीं से भी तर्क उठाते हैं। हाँ, पर्याय का प्रश्नोत्तर माला से समझ लिया विषय, अभी चलने दो जैसा चलता। हाँ, द्रव्यगुण पर्याय का विषय तो समझ लिया, अब द्रव्य है वो पर्याय है, पर्याय है वो द्रव्य है, अनुभव कहता है कि मैं तो द्रव्य हूँ, अनुभव की पर्याय ऐसा बोलता है कि मैं तो द्रव्य हूँ, ये तो बात झूठी होगी, नहीं वो बात सही है। आगम के अनुसार वो बात बराबर नहीं लगेगी, अध्यात्म में वो बात बराबर है। तो अध्यात्म का विषय आगम के सिद्धांतों से पर होकर के चलता है। सिद्धांत का विषय ऐसा है, द्रव्यान योग के सिद्धांत भी बाद बाजू चले जाते हैं और अध्यात्म का परिणाम ऐसे चलता है, पर वो सही है, वो सम्यक है। नियम सार की प्रकाशन गाथा ने कुंभ कुलाचार्य ने परम परिणाम भाव स्वरूप अपने आत्मा की भावना के लिए ग्रंथ बनाए, जिसको आत्मभावना, प्रचुर आत्मभावना, उसमें अपने भाव को रगड़ना है तो नियम सार जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। तो महान आचार्य ने ही अपनी भावना को भाई है इन शब्दों में, तो वहां तक वो पाते हैं कि क्षाई का भी चार भाव पर द्रव्य है। क्षाई भाव में क्षाई सम्यक दर्शन आता है, क्षाई भाव में केवल ज्ञान आता है, क्षाई भाव में परमानंद की दशा आती है जो सिद्ध भगवान को होती है। मुनिराज छठे सातवें जो स्थान में अभी इसलिए मुझे भावना में वो उपाधि नहीं है किंतु है। आगम ना बोलेगा, आगम के विद्वान ये कहेंगे द्रव्यान योग के क्षाई आदि चारों भाव है वो आत्मा के परिणाम है, जीव द्रव्य के परिणाम है, अशुद्ध परिणाम इसकी जाति के नहीं है लेकिन है आत्मा के। और शुद्ध परिणाम तो आत्मा की जाति के हैं, आत्मा से अभेद भाव से वर्तते हैं, इसलिए आत्मा के ही है। अध्यात्म में वो बात नहीं चलती, चारों नियम योग में अध्यात्म रहा है, अनूठा है। गंधर्व देव ने चारों अनुयोग में अध्यात्म को मूठा है और चारे अनुयोग के सिद्धांत से पार जा करके उसको रखा है। ऐसे अध्यात्म के सिद्धांतों के और अध्यात्म के परिणामों की लेवल दूसरी है कि आगम जमीन पर चलता है कि कितने ही तेजी से चलो, हो सकता है ट्रेन की स्पीड 500 मील की हो एक घंटे की, लेकिन हवाई जहाज है तो हवाई जहाज है, इनकी तो प्रारंभिक स्पीड ही 500 मील की हो जाती है, आगे जा करके तो 1000-2000 मील की हो जाती है। तो इसका लेवल और इसका लेवल एक नहीं, वो जमीन पर चलता है और आकाश में चलता है, लेवल ही अलग है, इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता। अगर कोई विद्वत्ता के अनुसार कंपैरिजन करना जाएगा समाधान नहीं हो पाएगा।
आप जागृति में गुरुदेव के प्रवचन निकले इसके बारे में,
हाँ।
50 मिनट का विवेचन किया
भावना का, गुरुदेव की भावना का ये विषय था। क्या हुआ शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, गुरुदेव को पता चला कि इस देह भी 2-3 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है, शरीर की प्रकृतियां विरुद्ध काम कर रही है, कभी तो ऊपर जाना होगा, ऐसे कहते थे, इधर जाएंगे आकाश स्वर्ग ऊपर है ना, इधर जाएंगे ऐसे कहते। तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी अध्ययन किया शास्त्रों का, उसका क्रीम जो था बहुत अध्ययन किया है, निवृत्ति लिया, शादी किया नहीं शुरू से, पहले तो दीक्षा ले लिया था, दीक्षा शादी किया नहीं, दीक्षा ले लिया और फिर मालूम पड़ गया कि ये तो मार्ग नहीं है, तो समय सारा जो पढ़ करके परिवर्तन कर लिया, ध्यान दशा में तो आए, निवृत्ति बहुत रह गई। तो कोई समाज की प्रवृत्ति में कभी पड़े ही नहीं, हजारों लोग आते थे, किसी को बोलते नहीं थे कि आपको इधर आना है या रुक जाना है। सुबह व्याख्यान चलता है, कोई प्रणाम करने को आता है कि महाराज हमको कई घंटे के बाद जाना है, तो कभी ऐसा नहीं कहते कि दुखे का व्याख्यान बहुत अच्छा है, अब दोपहर तक रुक जाओ शाम को जाना, ऐसा कभी नहीं बोलते। किसी को रोकने के लिए, ठहरने के लिए, ठहराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। दो टाइम व्याख्यान, एक टाइम चर्चा, 3 घंटा दे देते थे समाज को। बस 4 रोटी के सामने 3 घंटा बहुत ज़्यादा है वो तो। फिर अपने ज्ञान ध्यान में रहते थे, कोई प्रवृत्ति में ज्ञान ध्यान के अलावा। जैसे मुनिराज को होता है जंगल में, वैसे वो ज्ञान दशा में रामगढ़ में उसी प्रवृत्ति में रहे। 50 साल के बाद इस अध्ययन का क्रीम जो है वो उन्होंने निकाला और बोले कि ये मेरे भावना का विषय है, इसके व्याख्यान छपने चाहिए। कभी नहीं बोलते थे लेकिन इस भावना का विषय था, इसके व्याख्यान छपने चाहिए। इसलिए हम मीटिंग में ये लेते कि दुर्देव के भावना का भी प्रवचन है। उन्होंने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार और श्रीमद जी के 10 वचन, 47 शक्ति, 47 नय आदि सिलेक्टिव बातों पर प्रवचन किए। 143 प्रवचन हुए। कितने हुए हैं?
143।
143 प्रवचन अपनी भावना के अनुसार किए और वो आप लोग छपाएंगे, ऐसा भी उन्होंने आदेश दिया या अपनी इच्छा को रखा। लेकिन वो 78 साल में हुआ, 81 के जनवरी में देहांत हो गया। 2 साल के बाद तो पिछले 6 महीने तो प्रवचन चले ही नहीं थे, काफ़ी अस्वस्थ रहे और दे चुक गया। एक प्रवचन छपते नहीं थे, उनको विकल्प दिलाया एक प्रवचन उनको छपाना है। तो हमारे विद्रा ट्रस्ट में उनकी कार्यवाही का हमने आरंभ किया। 2 भाग छप चुके हैं, प्रवचन नवनीत मक्खन, गुरुदेव के सारे अध्ययन का मक्खन है वो है, इसलिए नाम रखा है प्रवचन नवनीत। 2 भाग छप चुके हैं, 3रा प्रेस में है, छप रहा है, 4थे की तैयारी अभी होगी। लेकिन ये सारा क्रीम उनके जीवन का जो है उसी व्याख्यानों में आया है। हिंदी में तो बहुत, हमारे पास कोई भाषा करने भाषांतर करने वाले है ही नहीं। जो भी करते हैं उसमें भी त्रुटियां बहुत रहती है आजकल, जो भी ये उसमें होता है
त्रुटियां, तो भाषा की तो त्रुटियां निकलती है
है नहीं। हमारे पास कोई विद्वान नहीं है, हिंदी भाषा को भाषांतर करने वाला कोई विद्वान नहीं है। काफ़ी खोज चलाते हैं, कभी प्रयास करते हैं तो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रवचन नवनीत भाग 1 का हिंदी भाषांतर करवाया वो शिवपुरी वाले मिले थे, प्रेमचंद जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी मिले थे हमको, सोनागिर के शिविर में मिले थे। लेकिन मैं करूँगा क्या, दूसरे विद्वानों को पहचाने ये भाषांतर बराबर नहीं है। दिया तो पूरा गायक भाषांतर ही गायक, भाषांतर छपाने के लिए 25,000 रुपये दिए, वो भी गायब। प्रयास करते हैं, इतने प्रयास करते हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें। देखो ये सब हो रहा है, हिंदी भाषा में आएगा, देर सवे कभी भी आएगा, अगर कोई विद्वान मिल जाए भाषांतर करने वाला आ सकता है। और अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, उसमें कोई शक नहीं। भावार्थ, जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावार्थ रुकते हैं, इसलिए वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। तो क्या है कि अखंड धारावाही ज्ञान से मैंने परिणति जिसकी टूटती नहीं, परिणति टूटी अज्ञान दशा में आ जाए, स्वरूप का अनुभव करता है। तो परिणति के जितने अंश है उसी के पैमाने में, उसी के अनुपात में राग द्वेष मोह रूपी भावास्त्र रुक जाते हैं। जैसे जैसे वितरागता और परिणति आगे बढ़ती है वैसे वैसे और रुक जाते हैं और रुक जाते हैं। प्रथम अनंतानुबंधि के आश्रय रुकते हैं, फिर प्रत्याख्यान वर्णी के रुकते हैं, फिर प्रत्याख्यान वर्णी के रुकते हैं, फिर संजन के रुकते हैं और वह आखिर में परिपूर्ण शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, मैंने राग रूप अपने का अनुभव करता है, विकल्प रूप अपने का अनुभव करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रव नहीं रुकते, उनके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रव चालू रहेंगे, इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। तो उसको तो अपना स्वरूप अशुद्ध अनुभव में रहेगा, दूसरी बात अनुभव में आने वाली है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है, यानी शुद्धात्मा का अनुभव होने से ही आश्र रुक जाएंगे और संवर की उत्पत्ति होगी। संवर अधिकार है, इसलिए संवर को लेकर के ये बात कही है। अब इसी अर्थ का कलस्वरूप काव्य कहते हैं 127, ये समर अधिकार है, इसका 126 कलश पे राजेंद्र जी की टीका बहुत सुंदर है। राजेंद्र जी है ना, इधर होगा आपके पास कलश टीका। वेद ज्ञान से संवर होता है, यहाँ से कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्र आचार्य ने विषय का प्रारंभ किया है। वेद ज्ञान दो प्रकार के विवरण किए गए हैं, एक राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को भी विज्ञान कहते हैं, और भिन्न होकर के केवल अपना शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव होए उसी को भी विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान का फल है। ऐसे अभेद विविक्षा से कथन करने की पद्धति है शास्त्रों में। शुद्धोपयोग को भी शुद्ध नहीं कहते हैं, और शुद्धोपयोग के विषयभूत शुद्धात्मा को भी शुद्ध नहीं कहते हैं। समझाने में पद्धति चली है। तो यहाँ राजमल जी ने वेद ज्ञान का अर्थ अनुभव किया है। इदम वेद ज्ञानम उदेति, प्रत्यक्ष ऐसा, इदम मैना प्रत्यक्ष ऐसा जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। यहां से बात लिया है, संवर होता है। कब संवर होता है? वेदज्ञान होता है तब। वेदज्ञान होता है तो क्या होता है कि शुद्धात्म स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव होता है। कैसा है वो अनुभव? कि निर्मलम राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध मैंने मल उस परिणति से रहित है। शुद्धि में अशुद्धि नहीं, अशुद्धि में शुद्धि नहीं, मुनाफे में नुकसान नहीं, नुकसान में मुनाफा नहीं। तो साधक के परिणाम में जितनी शुद्धि प्रकट हुई उसमें अशुद्धि नहीं, शुद्ध अंश में अशुद्धि नहीं, और जितना अशुद्ध अंश रहा उसमें शुद्धि नहीं। दो बात है, इसलिए इसको एक को ज्ञान धारा कहते हैं, दूसरे को कर्म धारा कहते हैं। बनारसदास जी ने इसी टीका पर से ही नाटक समयसार को लिखा है। ये कलश टीका उतनी अध्यात्म प्रधान है कि समयसार बनारसदास जैसे ज्ञानी पुरुष को रस चढ़ गया। राजमल जी की टीका पढ़ते ही उनको अध्यात्म का रस बढ़ गया और वो रस अपने कवित्व में काव्य में बाहर आया, तो नाटक समयसार बना है। तो उनको प्रेरणा मिली है यहाँ से बनारसदास जी, उन्होंने बहुत सी बातें प्रसिद्ध की हैं, वो भी ज्ञानी थे। कहते हैं कि कैसा है वो भेद ज्ञान में शुद्ध स्वरूप का अनुभव, कि निर्मल है, उसमें राग नहीं द्वेष नहीं, भव रूप शुद्ध परिणति से रहित है। मैंने शुद्धता के अंश में अशुद्धता किंचित मात्र भी नहीं है, पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, अनुभव हुआ वो जीव कोई पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, लेकिन इसके शुद्ध अनुभव में अशुद्धता नहीं। और कैसा है वो अनुभव, शुद्ध ज्ञान अनुभव, शुद्ध स्वरूप का ग्राहक विज्ञान उसका समूह यानी उसका कुंज है। मैंने शुद्ध ज्ञान शुद्ध स्वरूप का ग्राहक ज्ञान, शुद्ध स्वरूप को अपने रूप ग्रहण करने वाला ज्ञान, इस ज्ञान का ओढ़ है, मैंने धोध छोड़ता है अंदर में, शुद्धात्म परिणति का ज्ञान का धोध छोड़ता है ज्ञानी को, ऐसा लिया है। क्योंकि ये मुख्य परिणति है, वो परिणति का प्रभाव उतना है, वो परिणति का उतना प्रभाव है कि ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जैसी प्रवृत्ति और राग द्वेष करते हुए दिखाई देता है फिर भी बचता नहीं, ये इसका प्रभाव है। क्यों के अंदर में धोध बहता है, इसके आगे वो कुछ नहीं है, अशुद्ध अंश है, वो कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा कि शुद्ध स्वरूप का ग्राहक ज्ञान उसका समूह उसका पुंज है। और कैसा है कि एकम समस्त भेद विकल्प से रहित है, एक का अर्थ करते हैं, एक शब्द अध्यात्म के प्रकरण में बहुत प्रयोग किया गया है हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने, और अलग अलग जगह उसका अलग अलग प्रतिघटन है, लेकिन अभेद निर्विकल्प एक रूप अद्वैत ये सब भाव उसमें से निकाले हैं। समस्त भेद विकल्प से रहित है, ऐसा भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं, ऐसा अनुभव होने का कारण को बतलाते हैं, दिखाते हैं कैसा अनुभव क्यों होता है कैसे होता है। कि ज्ञान से रागस्य च द्वयोः विभागं परतः कृत्वा, ज्ञान गुण मात्र और अशुद्ध परिणति उन दोनों का भिन्न भिन्नपना एक दूसरे से करने के करके निर्ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान गुण मात्र, ज्ञान से का अर्थ क्या, गुण माने वेदन, गुण माने स्वभाव, स्वभाव माने वेदन, मैं तो यहाँ परिणाम कर बात चर्चा कर ली है, इसलिए ज्ञान गुण बोला है कि ज्ञान गुण, ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण क्यों करना, ये अमृत चंद्राचार्य ने लिया है 142 करस में। क्या आप कुछ भी करो, पंच महाव्रत पालो, कुछ भी करो, ऐसा करके आप चूट जाओ, चूरा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा करके लिखा है 142 इसी अधिकार में, वेदवाधिकार में। कृष्यताम च परे महाव्रत तपो भारे अमरनाथ फिर बहुत काल तक महाव्रत और तप को करके क्लेश प्राप्त करके दुखी हो करके टूट जाओ भग्न मैंने टूट जाना टुकड़ा हो जाना आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो किससे मिलने वाला है चौथी पंक्ति है नानम ज्ञान गुणम बिना कथम अभी प्राप्त भ्रमते नहीं नान गुण बिना ऐसा जो ज्ञान है जिसमें ज्ञान का संवेदन है ये ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण का अर्थ लिखा है शुद्ध स्वरूप अनुभव शक्ति के बिना ये अनुभव की बात लिया है ज्ञान गुण मैंने शुद्ध स्वरूप का अनुभव की शक्ति। तो यहां भी कहते हैं कि ज्ञान गुण मात्र मैंने ज्ञान ज्ञान का वेदन करे पर अशुद्ध परिणति रागादि भाव उन दोनों का भिन्न भिन्न बना एक दूसरे से करके विज्ञान प्रकट होता रहा है दोनों को भिन्न भिन्न करके। तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न करना कैसे आपने फरमाया कि भिन्न भिन्न कर लेना लेकिन करना कैसे हमें इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है तीन शब्दों में भावार्थ नीचे लिखा है ना वो बात लिया है अंतर दारुण दारण है ना इसका अर्थ क्या है कैसा करके भिन्नपना किया जाता है भिन्नपना किया तो सही लेकिन कैसा करके किया किस विधि से किया कि अंतरम सूक्ष्म अनुभव दृष्टि ऐसी करौत उसके द्वारा करौत को साधन बनाया भेद करने के लिए करौत चाहिए यहाँ प्रज्ञा क्षण ही नहीं लिया यहाँ करौत लिया है क्यों कि करौत को बार बार चलाई जाती है वेद ज्ञान बार बार किया जाता है इसलिए कैसे अंतरम सूक्ष्म अनुभव दृष्टि तीन शब्द पड़ा है कल बात चली थी ज्ञान का अंतरंग ज्ञान वेदन है ज्ञान का अंतरंग ज्ञान वेदन है ज्ञान का बहिरंग निराकार ज्ञान है ज्ञान का अंतरंग ज्ञानाकार ज्ञान है वो अंतरंग में सूक्ष्म है वो स्वभाव वो अनुभव में आता है जिसको अनुभव दृष्टि है दृष्टि माने उद्देश्य जो उद्देश्य को धारण करके ज्ञान के अंतरंग में अपने ज्ञान वेदन को अनुभव दृष्टि से देखता है पकड़ता है तो उनको राग से भिन्नता हो जाती है। ये भेद ज्ञान का क्लियर पिक्चर है यहां पर अंतरंग में भेद ज्ञान करना कैसे कि अपने ज्ञान सामान्य में रहा हुआ अंतर्ज्ञान में रहा हुआ ज्ञान गुण मैंने ज्ञान वेदन उसको ग्रहण करने की पकड़ने की अनुभव में देने का उद्देश्य धातु धारण करके अगर हम वेदन में आते हैं वेदन को मालूम करते हैं अनुभव करते हैं तो राग से भिन्नता हो जाती है। ज्ञान को वेदता वेदता राग को भिन्न करना है ज्ञान के वेदन बिना राग से भिन्नता होने वाली है नहीं ये प्रयोगात्मक भेद ज्ञान है। राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है ये विचार है वो विकल्पात्मक भेद ज्ञान है वो असली भेद ज्ञान नहीं है। असली भेद ज्ञान वो है कि जो अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से ज्ञान गुण ज्ञान ज्ञान वेदन से राग से भिन्नता का अनुभव करता है वही असली भेद ज्ञान प्रयोगात्मक है। ऐसा भेद ज्ञान करने से स्वानुभव की उत्पत्ति होती है दूसरा कोई इसका स्वानुभव का कारण है ही नहीं। कि उद्देश्य को कैसे धारण करना, इस विषय में समय सार के 15 गाथा में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है प्रैक्टिकल साइड से आचार्य महाराज ने, कि हमारे यहाँ नमकीन पदार्थ बनते हैं, साग बनते हैं, दाल बनते हैं, 100-200 आदमी जीने वाले होते हैं, तो कोई एक्सपर्ट को चखने के लिए भेज देते हैं, सबको नहीं मालूम पड़ेगा, जो इस विषय के एक्सपर्ट है मैंने उद्देश्य को पकड़ सकता है, आप बस चख लो, बस से लोग गिनने वाले हैं तो ये रसोई करने वाले की भूल तो नहीं हुई, तो पहले वो नमक को देखेगा। अब नमक तो भूल मिल गया, डाला कितना तो देखा नहीं, और अभी देखने में नजर में आता नहीं, चखने की चीज है, नजर की चीज
नहीं
है, चम्मच पर थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसमें मिर्च डाला है, खटाई डाली है, हमारे यहाँ तो मिठाई भी डालते हैं, गुड़ या शक्कर डालते हैं, और आजकल 56 जात के मसाले डालते हैं, मसाले का पैकेट आता है उसमें दिखता है कि इतनी इतनी चीजें इसमें हैं, हम नहीं जानते कि सबों का स्वाद एक साथ है, वहाँ सब घुल मिल गया है, लेकिन चखने वाला अपने लक्ष्य में से सबको हटा देते हैं, सभी स्वाद को हटा देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, एक नमक को पकड़ता है, कब पकड़ता है तो उद्देश्य को धारण करता है, तब इसमें खारापन कितना, उसकी कमी वैसी है या नहीं है या सप्रमाण है, उसका जजमेंट वो लेता है, कब लेता है, उद्देश्य को धारण करता है तब। ऐसे हमारे परिणाम में ज्ञान और राग का स्वाद दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ होने पर भी अगर हम राग को स्वाद को हटा देते हैं, गौण कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, और ज्ञान में अकेला वेदन को हम ग्रहण कर लेते हैं उद्देश्य को धारण करके, तो हमको वेद ज्ञान होकर के स्वानुभव की प्राप्ति हो जाती है, यही समय सार का सार है। अगर ये वेद ज्ञान का कला जिसको आ गई, ज्ञान कला जिसके प्रति जागी, हो गया उसका काम।
अथवा अशुभ कामना आकुलता की।